ओम शांति। छठवीं शताब्दी चीन के बहुत बड़े दार्शनिक और लेखक और ताओइज्म के संस्थापक लाओत्से के जीवन में एक वृत्तांत है। उन्होंने एक बहुत बड़े संगीतज्ञ के बारे में कुछ सुना था और लाओत्से उस म्यूजिशियन से मिलना चाहते थे, क्योंकि वो संगीतज्ञ बहुत बड़ा था, पर कहा ऐसा जाता था कि अब उसने बजाना बंद कर दिया है। परंतु बावजूद इसके वो अब भी सबसे बड़ा संगीतज्ञ था। तो लाओत्से उस संगीतज्ञ को मिलने गए और जब मिलने गए तो देखा वो संगीतज्ञ एक पेड़ के नीचे बैठा है और उसके हाथ में ना कोई वीणा है, ना कोई वाद्य है, ना कोई साज, ना कोई सामान। तो लाओत्से उससे पूछता है कि आपका वाद्य कहाँ है, आप संगीत कैसे बजाते हो। वो कहता है, एक समय था जब मैं संगीत बजाता था, गीत गाता था, और तब मुझे वाद्य की, साज सामान की आवश्यकता पड़ती थी। अब वो गीत स्वतः ही निकलता है, अब वो गीत, वो संगीत, वो सुर, वो सरगम, वो सांस, वो ताल स्वतः ही बचता है, निकलता है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो लाओत्से कहता है, पर मुझे आपका वो कोई गीत, वो संगीत सुनाई तो नहीं देता। वो संगीतज्ञ कहता है, रुकना पड़ेगा, मेरे पास तुमको रुकना पड़ेगा यदि वो संगीत सुनना है तो, जो कि अब मैं गाता हूं और जो अब मेरे अंदर से निकलता है। और लाओत्से वहां रुक जाता है और बहुत समय रुकने के बाद घर वापस लौटता है। और जब वापस आता है तो लाओत्से के शिष्य, क्योंकि वो स्वयं बहुत बड़ा तत्वज्ञानी है, बहुत बड़ा फिलोसोफर, दार्शनिक है, उसके शिष्य पूछते हैं, क्या सुन लिया संगीत, कैसा था। वो कहता है, हाँ सुन लिया, वो संगीत शून्य का संगीत था, वो संगीत मौन का संगीत था, और वास्तविक संगीत वही है जो शब्दों का अतिक्रमण कर दे। संगीत शोरगुल नहीं, संगीत परम मौन है, उस मौन की अवस्था में जो सुना जाता है वही वास्तविक संगीत है। और संसार के जितने संगीतज्ञ हुए हैं, महान से महान, उन सब का अनुभव है। और उन्होंने लिखा है कि जैसे जैसे संगीत की परम अवस्था तक हम पहुंचते गए, वो वीणा को तोड़ देना पड़ा, क्योंकि सभी शब्द बाधा है। और जो आत्मा उस परम मौन के संगीत को सुन लेती है, तब संगीत बजाने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक स्वतः एक रस बचता रहता है। ऐसा ही अनुभव एक दूसरे बहुत बड़े संगीतज्ञ हाय हुई चीन का, उसने भी लिखा है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया, वीणा को तोड़ दिए, फिर उसकी आवश्यकता न पड़ी, क्योंकि अब वो अंदर से बजता है। अब तक का जो संगीत था केवल तैयारी थी, ठीक करना था, ताल ठोक वीणा को कसना मात्र था, पर रियल जो बज रहा है वो अब बज रहा है। तो बाबा ने भी एक गीत सुना, एक सांस सुना, एक संगीत सुना जो हर हृदय में बज रहा है, हर बच्चे के दिल में बज रहा है। वो कौन सा गीत था? उस गीत के बोल, उस गीत के लिरिक्स क्या थे? बाबा। परंतु कहने वाले इस एक शब्द को, इस एक गीत को कितनी अलग अलग ढंग से कह रहे हैं। तो साज और तर्ज अलग अलग थे। कौन किससे मिल रहा है आज? दिलरुबा। दिलरुबा से कौन मिल रहा है? दिलाराम मिल रहा है। और एक गीत उसे सुनाई दे रहा है, एक शब्द उसके कानों पर पड़ रहा है, और वो एक शब्द है बाबा। शब्द एक ही है, गीत एक ही है, परंतु फिर भी सुनाने वाले अलग अलग रीति से सुना रहे हैं। कितने प्रकार से सुना रहे हैं? 9 प्रकार से, या तो 11। सबसे पहला, कोई कोई इसे खुशी से गा रहा है। कैसे गा रहा है? खुशी खुशी से गा रहा है। दूसरा, उड़ने और उड़ाना, स्वयं भी उड़ रहा है और दूसरों को भी उड़ा रहा है, इस धुन में इस तर्ज से गा रहा है। तीसरा, अभ्यास। तीसरा अभ्यास, उसमें भी किसी का अच्छा अभ्यास है तो किसी का अभ्यास पूरा नहीं है, तो एक सांस को दूसरे सांस से मिक्स कर देता है। अभ्यास। तीनों में से श्रेष्ठ कौन? तीनों ही। किसी संगीतज्ञ ने कहा है, और इसके पहले भी हमने कहा था कभी, वो कहता है कि यदि मैं 3 दिन अभ्यास न करूं तो श्रोताओं को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यदि मैं 2 दिन अभ्यास न करूं संगीत का, तो संगीत के जो विशेषज्ञ है, दूसरे संगीतज्ञ, उनको पता चल जाता है कि गुरुजी का अभ्यास थोड़ा ढीला हो गया है। और यदि मैं 1 दिन अभ्यास न करूं तो मेरे जो पट शिष्य है, जो मेरे साथ है और जो सीख रहे संगीत और जो निरंतर मुझे सुनते रहते हैं, उनको पता चल जाता है कि आज तैयारी थोड़ी सी कम है, क्लास में दम नहीं है, कुछ तो गड़बड़ की है, ढंग से पढ़ी नहीं है शायद मुरली। और वो कहता है, जहां तक मेरा सवाल है, मुझे तो निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, मुझे तो निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। अगर मैं निरंतर अभ्यास ना करूं तो सुबह उठता हूं और खाली खाली सा लगता है। सतत अभ्यास, अहर्निश अभ्यास। तो 3 प्रकार ये मुख्य देखे बाबा ने। पहले वो जो खुशी खुशी से बाबा बाबा कहते हैं, और बाबा बाबा कहना अर्थात ये केवल शब्द नहीं, क्या ये वो कहना है मुख का? बाबा 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 ऐसा कहना है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। शायद ये जो गीत बाबा कह रहे हैं, इसका कोई और अर्थ हो सकता है जो अंदर से निकल रहा है, खुशी से निकल रहा है, अर्थात कोई शिकायत नहीं है जीवन के प्रति, किसी और के प्रति। जीवन खुशी से भरा हुआ है। दूसरा, ये थोड़ी ऊंची अवस्था है, खुद भी उड़ रहे हैं और दूसरों को भी उड़ा रहे हैं। भक्ति मार्ग में अष्ट सिद्धियों का गायन है। आज की मुरली में भी बाबा ने अष्ट सिद्धियों का वर्णन किया है, 8 प्रकार के चमत्कार जो तुम्हें करने हैं, 8 सिद्धियां जो तुम्हें प्राप्त है, 8 सिद्धि स्वरूप स्थितियां जो तुम्हें बनानी है। तो ये तीसरा अभ्यास किया है बाबा 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 कहने का। उसके बाद में चौथा वो है नाचने वाले, नाच नाच के गा रहे हैं, खुशी इतनी अधिक है कि नाचना चालू है और नाच नाच के गा रहे हैं। पांचवा, स्नेह में समा कर गा रहे हैं, डूबे हुए हैं, एक की याद में मगन है, एक में, और तब वो आवाज निकल रहा है, पर शायद ये आवाज भी शून्य का आवाज है, मौन का आवाज है, निश्शब्द का आवाज है, निस्तब्द का आवाज है, शब्दों का नहीं, द साउंडलेस साइलेंस का है। उसके बाद में कोई है प्राप्ति, प्राप्ति के कारण गा रहे हैं, इतना कुछ मिल चुका है कि अब कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ प्राप्त है। कुछ भी ऐसा नहीं त्रिभुवन में जिसकी चाह है, जो पाना था वो पा लिया, तुम मिल गए, सब कुछ मिल गया, और कुछ नहीं चाहिए, किसी मनुष्य से तो कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि सारा प्रेम तुमसे मिला है। ना प्रेम चाहिए, ना केयर चाहिए, ना अटेंशन चाहिए, ना शक्ति चाहिए, ना सकाश चाहिए, ना सिंपति, ना सहानुभूति, ना किसी की प्रशंसा, ना किसी से रिकॉग्निशन, एक्नॉलेजमेंट, किसी से कुछ नहीं चाहिए। इन सब से परे ना किसी की पालना, स्वयं भगवान पालना कर रहा है, स्वयं भगवान सब कुछ दे रहा है, सब कुछ प्राप्त है, ये अवस्था से गा रहे हैं। उसके बाद है पुकार वाले, पुकार रहे हैं, और पुकार में याचना है, पुकार में कुछ तो चाहिए, संसार से नहीं मांग रहे परंतु भगवान से जरूर मांग रहे हैं, मांगना फिर भी मांगना है, चाहे भगवान से या संसार से, कुछ तो दे दो, कुछ तो कर दो, इसको ज्ञान मिला दो या उसको ज्ञान मिला दो, इसकी बुद्धि का ताला खोलो या उसकी बुद्धि का ताला खोलो, कुछ तो करो। उसके बाद में है दिल शिकस्त होकर गाना, कैसे गाना, दुखी होकर, उदास होकर, मरमर कर, पुकार रहे है उसी को परंतु दुखी है, दुख के स्वर है, साज दुख का है। और संसार की एक बात आज बाबा ने कही, ये मुरली 84 की है, एक आंकड़ा दिया है, संसार में कितने लोग मरे पड़े हैं, 99%, 99% लोग मरे पड़े हैं। कहां मरे पड़े हैं? चिंता की चिता पर। 84 में 99 थे, अब कितने हैं? इतने लोग मरे पड़े हैं। पर यहां पर भी बाबा को पुकारते समय दिल शिकस्त, और अगला मेहनत से पुकार रहे। कैसे पुकार रहे? पुकार तो रहे परंतु स्वतः नहीं निकल रहा है, मेहनत से निकल रहा है। तो इतने तो ये मुख्य प्रकार है, और इन मुख्य प्रकारों में और दो श्रेणियां हैं। कोई कोई है जिनका ये आवाज स्वतः निकल रहा है, जैसे विज्ञान के इन्वेंशंस, साइंस के। और कोई कोई है जिनको बजाना पड़ता है, स्विच को ऑन करना पड़ता है। कोई है जिनका स्मृति का स्विच निरंतर खुला हुआ है, निरंतर ऑन है। कोई है जिनको बटन दबाना पड़ता है, एक ऑटो स्टार्ट है, एक किक स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट वाले, स्वतः ही बज रहा है। ये और एक्स्ट्रा दो प्रकार। तो इतने सारे प्रकार से बाबा बाबा शब्द बाबा तक पहुंच रहा है। कोई उसे खुशी से पुकार रहा है, तो कोई उसे उड़ने उड़ाने के ढंग से पुकार रहा है, तो कोई उसे अभ्यास से पुकार रहा है, तो कोई उसे प्राप्ति, कोई उसे पुकार, कोई उसे स्नेह में समाकर, कोई उसे दिल शिकस्त, कोई उसे मेहनत, और कोई उसे एक बाकी, कोई उसे वो हो गया प्राप्ति के आधार पर। तो इतनी सारी भक्ति मार्ग में नव निधियां और अष्ट सिद्धियों का गायन, ऐसे ऐसे बाबा को पुकार है। और ये सारी पुकार जब बाबा ने सुनी तो बाबा को क्या हुआ, हर्षित हुए। इसमें कुछ पॉजिटिव है, कुछ गड़बड़ वाले भी है, पर जो भी है ये सब सुनकर बाप क्या हुए, हर्षित हुए। और हर्षित होकर बाबा ने कुछ बातें कही। वो कौन सी बातें थी, बड़ी शक्तिशाली बातें हैं। क्या कहा क्या कहा? नहीं नहीं, लंगड़े को टांग वो सब बाद में है, वो तो अष्ट सिद्धियां है, वो चमत्कार है, वो रूहानी अलौकिक सिद्धियां है, उसकी चर्चा अलग। उसके पहले कुछ कहा है, क्या कहा बाबा ने? कहा कि तुम सभी ब्राह्मण आत्माएं, ऐसी कुछ बातें कही कि तुम एक एक बाप के स्नेह में समाई हुई आत्मा हो, तुम एक की लगन में समाई हुई आत्माएं हो, तुम सर्व संबंधों से बाप को याद करने वाली आत्मा हो, तुम सब कुछ बाप के लिए करने वाली आत्मा हो, तुम हमारा संसार ही एक बाप है, तुम्हारी स्मृति में, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे मुख में एक बाबा ही है, तुम्हारे हर कदम में, याद के कदम में पद्मों की कमाई समाई हुई है। कितनी ऊंची ऊंची बातें हैं एक एक। तो जब बाबा ने यह आवाज सुनी तो ये सात बातें हमारे लिए बाबा ने कही कि तुम एक एक बाप के प्यार में समाई हुई हो, तुम एक एक लगन में मगन हो, तुम एक एक बाप को ही संसार बना दिया है, सर्व संबंध एक से है, सब कुछ जो करते हो किस लिए करते हो, एक बाप के प्रति करते हो, और तुम्हारे मुख में एक बाबा, तुम्हारी स्मृति में एक बाबा, तुम्हारी दृष्टि में एक बाबा, तुम्हारे हर कदम में एक बाबा, तुम्हारा संसार ही एक बाबा। पानी की एक मछली ने तालाब में जब स्विमिंग कर रही थी, कुछ मछुआरों की बातें सुन ली, मछुआरे कह रहे थे जल ही जीवन है, उस मछली को लगा कि जल क्या है और जो जीवन है और मुझे पता नहीं, तो वो थोड़ी बड़ी मछलियों के पास गई पूछने के लिए और पूछा कि ये जल क्या होता है। बड़ी मछलियों ने कहा जल हमने आज तक कभी सुना नहीं, जल क्या होता है, इतने सारे शास्त्र पढ़े पर आज तक जल शब्द कभी नहीं आया, तुम ऐसा करो सागर की मछलियों के पास जाओ, सुना है हेडक्वार्टर से वो, वहां पर ज्ञानी आत्माएं रहती है, किसी सीनियर से जाके पूछो। तो छोटी मछली निकल पड़ी नदी से बहती हुई और सागर तक पहुंच गई, और सागर में बड़ी बड़ी मछलियां थी मुख्यालय में ज्ञानी आत्माएं रहती है ना, तो उनसे पूछा कि मैंने सुना है जल ही जीवन है, ये जल क्या होता है? उस बड़ी मछली ने कहा तुम इस झंझट में पड़ो ही मत, जल क्या होता है, क्योंकि मैंने भी एक बार ऐसा ही सुन लिया था, कुछ मछुआरे जल की बातें कर रहे थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मैं उनके जाल में फंस गई और बाहर आ गई जमीन पे, तड़पने लगी, तब मुझे पता चला जल क्या है और मैं कूद के अंदर आ गई। अगर तुम जानना चाहती हो जल क्या है तो जल से बाहर निकलो, इस समुद्र से बाहर निकलो, फिर देखो क्या अवस्था होती है, ऐसे तड़पोगी तब पता चलेगा जल क्या है। जल तो वही है जहां हम जी रहे, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह जो है वो जल ही जल है, ऊपर नीचे दाएं बाएं एक बाप ही संसार है। इस संसार से बाहर निकल के देखो फिर पता चलेगा संसार क्या होता है। वो जो तड़प है तब पता चलेगा क्या होता है। इस ब्राह्मण जीवन का महत्व तब पता चलेगा जब इस संसार से कुछ समय के लिए निकलने की कोशिश मत करना, जो निकले हैं उनसे पूछ लेना, नहीं तो तड़पना पड़ेगा और ये तड़पन बहुत भारी होगी, बहुत पीड़ादायी होगी। तो बाप ही क्या है, संसार है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हेडक्वार्टर्स, बड़ी बड़ी मछलियां हैं। तो ये सात बातें देखी और फिर पांच सोमान दिए, कौन कौन से, तुम्हारे मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है, ये समान है मुरली से, मुरली से समान इकट्ठे करने हैं, ज्ञान रत्न है, ऐसे रत्न संसार में और कहीं नहीं है, जो भगवान सुना रहा है, देवगान है ये, दिव्य गान, ब्रह्मलोक का दिव्य गान, वो उस ब्रह्म से आता है और ये दिव्य नाद अनहद नाद सुनाता है, कौन सा, मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है, कितना ऊंचा श्रेष्ठ समान है। दूसरा संसार के आगे तुम कौन हो, एग्जाम्पल हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा है, संसार के आगे कौन हो, उदाहरण हो। तीसरा, ताज तख्त और तिलक नशीन हो और तुम्हारा गुणगान कौन कर रहा है, स्वयं भगवान, और तुम्हारी माला कौन जप रहा है, स्वयं भगवान, कितने ऊंचे सोमान है पांच, हमारी माला वो जप रहा है, हमारा गुणगान वो कर रहा है, गीत गा रहा है, ताज और तख्त और तिलक नशीन हूं, भाग्य का सितारा चमक रहा है और संसार के आगे हम कौन है, उदाहरण, एग्जाम्पल, इतना श्रेष्ठ जीवन है, इतना महान जीवन है। तो ये बाबा ने कहा और फिर सिद्धि की बात कही, संसार में आठ प्रकार की सिद्धियां, वैसे तो सिद्धियां बहुत है परंतु आठ मुख्य सिद्धि है। इस मुरली में भी बाबा ने कहा तुम्हें आठ सिद्धियां धारण करनी है, ये आठ सिद्धि स्वरूप बनना है, चमत्कार दिखाने वाली चमत्कारी आत्माएं हो, अलौकिक सिद्धियां है, रूहानी सिद्धियां है, अविनाशी सिद्धियां है, संसार में कौन सी सिद्धियां है, सिद्धियां प्राप्त करते उसके भी अलग अलग ढंग बताए हैं, कोई कोई है जन्म से ही सिद्धियां लेकर आए हैं, कोई कोई मंत्र द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं, कोई कोई जड़ी बूटियों द्वारा केमिकल्स खा खा के सिद्धियां प्राप्त करते हैं, कोई कोई साधना से सिद्धि प्राप्त करते हैं, कोई कोई समाधि से, अलग अलग विधियां है सिद्धि, सिद्धि अर्थात सफलता बड़ा ही कमजोर अनुवाद है, पुअर ट्रांसलेशन, सिद्धियां शक्तियां होती है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स, सुपर नेचुरल पावर्स, संसार में अलग अलग प्रकार की सिद्धि, आकाश गमन की सिद्धि, आकाश में चलना, परकाया प्रवेश करना, जैसे शंकराचार्य का दिखाया है, मंडल मिश्र के साथ में विवाद चल रहा था, विवाद अंत ही नहीं हो रहा था, उसकी पत्नी आई मंडल मिश्र की और तब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे, वो गृहस्थ जीवन के प्रश्न थे, शंकराचार्य ब्रह्मचारी उसको कुछ पता नहीं था, एक राजा मृत राजा के शरीर में उसने प्रवेश किया, परकाया प्रवेश करने की सिद्धि, एक सिद्धि है जिसमें खाने पीने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, एक सिद्धि है जिससे मौसम का कोई प्रभाव नहीं, एक सिद्धि है जिसमें दूर का सुना जा सकता है, क्लायर ऑडियंस क्लायर वॉयंस, दूर क्या चल रहा है वो देखा जा सकता है, जैसे महाभारत में संजय को दिखाया, सुन भी रहा है देख भी रहा है कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है एक जगह बैठकर, ये भी एक सिद्धि है। एक ऐसी सिद्धि है संजीवनी सिद्धि, कोई मर गया है उसको जिंदा कर देना, ये एक सिद्धि है, जीसस क्राइस्ट का दिखाया है भाई, वो मैरी आती है जीसस क्राइस्ट के पास, कहती है कि हे प्रभु आप कहां थे, मेरा भाई मर गया, आप अगर होते तो ऐसा ना होता, वो कहता है मुझे लेकर चलो, लेकर जाता है, तीन दिन हो चुके हैं वो दफना अंदर एक गुफा में उसको रखा हुआ है, वो कहता है लाजरस कम आउट, और वो चल के बाहर आता है। ऐसी बहुत सारी सिद्धि दिखाई है संसार में, आठ मुख्य प्रकार की सिद्धियां है। सबसे पहले अनिमा, अनिमा अर्थात छोटा हो जाना, एकदम छोटा, वो हनुमान जी को दिखाया है ना, छोटा हो जाता है वो लंका में प्रवेश करते समय। दूसरी सिद्धि है महिमा, बड़ा हो जाना एकदम। तीसरी सिद्धि है गरिमा अर्थात भारी हो जाना। फिर है लघिमा, हल्का हो जाना। फिर है प्राप्ति, जो चाहिए वो सामने। एक है प्रकाम्य, प्रकाम्य अर्थात जो इच्छा है वो हो जाना। फिर है इशित्व और वशित्व, इशित्व अर्थात, वशित्व अर्थात किसी को भी अपने वश में कर लेना, इशित्व अर्थात पावर, साम्राज्य किसी पर। आठ प्रकार की सिद्धियां गाई है बाबा ने भी कहा है तुम्हें आठ प्रकार की सिद्धियां धारण करनी है। कौन सी सिद्धि है वो? सबसे पहली, जिसके पास पंख नहीं है उसको क्या कर दो? पंख दे दो। अर्थात क्या? पंख जोड़ने हैं उसको, क्या करेंगे? ज्ञान और योग के पंख दे दो, उमंग और उत्साह के पंख दे दो। जिनके पास पंख नहीं है, आत्मा के पंख माया ने काट दिए हैं। सोचो एक पक्षी जिसके पंख नहीं है कैसे तड़पता है, उड़ नहीं सकता, कैसी पीड़ा है उसकी, जिसके पंख ही किसी ने काट दिए। संसार की आत्माओं के पंख कटे हुए हैं। बाबा ने कहा कि ये सबसे पहली सिद्धि है जो तुम्हें करनी है। वो जो संसार में सिद्धि है उसमें अगर कोई सिद्धि प्राप्त भी कर लेता है तो बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है, बाद में और इच्छा होगी। जैसे जीसस क्राइस्ट का ये उदाहरण दिया कि जीसस क्राइस्ट ने एक व्यक्ति जो मर गया था उसको जिंदा कर दिया, पर वो जिंदा होने के बाद पाप करे तो फिर उसका बोझ किस पे है? तो सबसे पहली सिद्धि हमारी कौन सी है? जिनके पंख कटे हुए हैं उनको क्या करना है? पंख देने, परमात्मा परिचय देना है, परमात्मा ज्ञान देना है, शक्तियां भरनी है उनमें, उमंग उत्साह में लाना है फिर से। और कुछ कुछ ब्राह्मण है उनके भी पंख कटे हुए हैं, उनको भी पंख देने हैं। दूसरी सिद्धि है जो चल नहीं पाते उनको क्या करनी है? टांग देते। कौन सी टांग? प्राप्ति की टांग, समझ की टांग। जिनको जो चल नहीं सकते, पंगु लंगये ते गिरिन मुकम करोति वाचालम तत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो चल नहीं सकते उनको क्या कर दो? टांग दे दो, प्राप्तियों की टांग दो, उत्साह की टांग दो, शक्ति की टांग दो। इतने लंगड़ लंगड़ के चल रहे बेचारे, वो काम हमारा है, ये हमारी सिद्धि है। हमारी वो आकाश में चलने वाली सिद्धि नहीं है, वो सिद्धियों से तो नुकसान भी होता है। जैसे एक योगी था, उसको बड़ा घमंड था अपनी सिद्धियों पर। एक बार बैठा तपस्या कर रहा था, समुद्र था बहुत बड़ा, और अचानक से तूफान और हवाएं जोर से चलने लगी, उसने सोचा देखू तो मेरी अपनी सिद्धियां कहां तक हुई है। तो उसने ऑर्डर दिया, हे हवा रुक जा, और हवा रुक गई। इतना खुश हो गया। और वहां एक नाव जा रही थी जिसमें 40 लोग थे। नाव जब जा रही थी और हवा जब रुक गई तो नाव डूब गई, 40 लोग मर गए। उसकी सारी सिद्धियों, उसके पाप की वजह से इसकी सिद्धियां समाप्त हो गई, क्योंकि वो मर गए ना, हवा को रोक दिया। तो सिद्धियों से तो नुकसान भी दिखाया है, क्योंकि उसमें नाम मान शान आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, लोग आने लगेंगे, भविष्य करने लगेंगे, ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, कल लोग आएंगे, मेरा क्या होगा। किसी किसी के पास सिद्धि है, हाथ लगा दिया बीमारी ठीक, माया चालू। स्वामी विवेकानंद ने अपनी एक व्याख्यान में अपने युवा काल का एक अनुभव लिखा है, अमेरिका जाने से पहले का। उन्होंने लिखा है कि हम साउथ में थे, दक्षिण में, तो तीन मित्र, हम तीनों ने एक सिद्ध बाबा के बारे में सुना था और उसके पास हम पहुंचे और उस व्यक्ति ने हमसे कहा, तीन चिट पेपर दिए हमारे पास तीनों को और कहा कि अपने मन में कुछ एकदम कठिन सा सोचो। तो तीन मित्र थे, उसमें से एक शायद डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा था, उसने जर्मन भाषा में मेडिकल साइंस की कुछ बातें थी वो सोची। दूसरा एक मित्र था, उसने कुरान की बातें कुछ सोचे और नरेंद्र विवेकानंद जो थे उन्होंने संस्कृत के बड़े कठिन से श्लोक सोचे। ये तीन बातें। फिर थोड़ी देर के बाद उस योगी ने कहा, अब अपने जो चिट पेपर है वो खोलो और उसमें वो जिन्होंने जो सोचा था वो लिखा था। पहले ब्लैंक था, उसमें बाद में लिखा था। तो उन्होंने कहा ऐसे योगी भारत में अभी भी है, बहुत सारे हैं, जो इस तरह की बहुत सारी पावर से उनके पास सिद्धियां, इनको कहा जाता है। और बाबा ने कहा लोग ऐसे लोगों के पीछे जाते हैं, क्या करते हैं, समय देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, हमको कोई सिद्धि, एक आधे का पता चल गया इसके पास सिद्धि है तो बस भीड़ चालू, फिर कुछ ना कुछ मांगेंगे उससे, नौकरी हो मिल जाए, कोई बीमारी ठीक हो जाए, हाथ ही रख दो बस तो कल्याण हो जाए। सिद्ध बाबा के पास जाते रहते हैं, सिद्धि जिनके जिनको प्राप्त होती है। तो पहली सिद्धि बताई, जो पंख नहीं है उनको पंख दे दो, ये है वास्तविक सिद्धि। दूसरी सिद्धि बताई, जिनके पास टांग नहीं है उनको टांग दे दो। तीसरी सिद्धि, जिनके पास आंख नहीं है उनको त्रिनेत्र दे दो, तीसरा नेत्र दे दो, जो आंखें चमड़ी को देखती है और विकारों के वशीभूत है, ऐसे लोगों को तीसरा नेत्र दे दो ज्ञान का, जो आत्मा को देखना चालू करे। क्योंकि संसार का पतन देहभान और देहिक दृष्टि से सबसे ज्यादा हुआ है। इसलिए कौन सी सिद्धि हमें प्राप्त करनी है, सिद्धि स्वरूप हमें बनना भी है और दूसरों को बनाना भी है। हम केवल सिद्धि देने वाले नहीं, दिखाने वाले नहीं है, देने वाले भी है। तो ये तीसरी सिद्धि। चौथी सिद्धि, भिखारी को क्या करना है, उसको बादशाह बना दो। और भिखारी को क्या करना है, उसको संपन्न बना दो, उसको खजाने दो दो। और कौन सा खजाना, पाना था सो पा लिया, मिल गया, ये गीत वो गाने लगे, ये है वास्तविक सिद्धि। बाकी किसी को पैसे दे दो तो पैसे खर्च कर देगा, अविनाशी पैसे उसको दे दो, अविनाशी खजाना उसको दे दो, ये वास्तविक सिद्धि है, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। उसके बाद में जो दुख की शैया पर लेटे हुए हैं उनको क्या करना है, उन्हें सुख का गीत गाना सिखा देना है, जो दुख की शैया पर है। और जो चिंता की चिता पर लेटे हैं उनको क्या करना है, चिंता की चिता पर उनको नाचना सिखाना है खुशी से। और जो दिल शिकस्त हो गए उनको क्या करना है, उमंग उत्साह का गीत सिखाना है, ये सातवां। और आठवां, जो मर चुके हैं उनका क्या करना है, जो मर गए उनको क्या कर देना, जिंदा कर देना। मर गए अर्थात, एक तो ज्ञान से मर गए और वैसे मर गए अर्थात संसार में भी सब मरे पड़े हैं, जीवन जी नहीं रहे, मरे मर चुके हैं। जिसको वो जीवन कह रहे हैं वो जीवन नहीं है, मृत्यु से भी बदतर जीवन है, प्रतिपल मर रहे हैं। तो ये 8 सिद्धियां है, दुखों की शैया पर जो लेटे हैं उनको क्या करना है, हमें सुख का गीत सिखाना है। चिंता की चिताओं में जो बैठे हैं उन्हें सुख का नाच सिखाना है। तो उधर 8 सिद्धियां है, ये भी 8 सिद्धियां है, और हरेक को सिद्ध बाबा बनना है, सिद्ध बाबा भव। जो भी आए उसे सिद्धि प्रदान करनी है। वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए कितना समय लगता है, जैसे दिखाया है, रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आता है, कहता है मैंने 20 साल तपस्या की और कौन सी सिद्धि प्राप्त की, पानी पर चलने की। वो कहता है इतना टाइम वेस्ट कर दिया, 2 आने वो नाविक को दे दो, खिवैया को 2 आने में पार करा दे, टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ और किया होता तो अच्छा होता। वो सिद्धि प्राप्त करने में बहुत समय लगता है, वो सिद्धि प्राप्त करने में बहुत मेहनत लगती है, उसके बाद प्राप्त होती है, और अगर उसका गलत प्रयोग करो तो नुकसान होता है, उल्टा नुकसान होता है। वो एक जन्म की सिद्धि है, हमारी सिद्धियां जन जन के लिए है, ये वास्तविक सिद्धियां है। हम सिद्धि स्वरूप आत्मा है, और सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विधि स्वरूप बन जाओ, विधि स्वरूप, विधि स्वरूप से सिद्धि स्वरूप। कैसी अलौकिक सिद्धि है हमारी, चमत्कारिक सिद्धि है ये सारी। तो बाबा ने कहा तुम्हें सिद्धि स्वरूप बनना है, कब बनना है, अब, बाद में नहीं, भविष्य के दिलासे पे मत रहो, अभी खाना है, प्रत्यक्ष फल है ये सिद्धियां, अभी सारी सिद्धियां स्वयं में धारण करनी है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब मुख्य प्रश्न ये है, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए, विधि पूर्वक सिद्धि स्वरूप बनने के लिए क्या करें, जिससे ये सारी पावर्स हम में आ जाए। संसार में ये पावर जिसके पास होती है उसे बहुत महान समझा जाता है, कोई गुरु जैसे रमन महर्षि के लिए दिखाते बाय लोकेशन, इधर भी है और उधर भी है, 2 जगह एक साथ रहना। स्वामी योगानंद ने अपनी जीवन कहानी योगी कथामृत में एक गंद बाबा का वर्णन किया है जिसके शरीर से सुगंध आती थी, एक नॉन ईटिंग सेंट का वर्णन किया है गिरिबाला जो खाना ही नहीं खाती थी। संसार में ये सारी सिद्धियां करते हैं लोग, हर सिद्धि करने की कोई विधि है, ये करो तो वो पता चल जाएगा, वो करो तो हो जाएगा। एक सिद्धि है जिसमें गुरु अपने शिष्य को आदेश देता है, कोई माँ है जिसका कोई बेटा नहीं है, उस गर्भ में प्रवेश करने का और उसके कोख से जन्म लेने का, ये भी एक सिद्धि दिखाई है। द्वापर से ये सारी सिद्धियों का वर्णन है, पतंजलि योग सूत्र में डिटेल वर्णन किया हुआ, ये करो तो ये सिद्धि मिलेगी, ये करो तो ये सिद्धि मिलेगी, 3 वर्ष ये करो, 4 वर्ष ये करो, 10 वर्ष वो करो तो सिद्धियां प्राप्त होगी। परंतु ये सारी सिद्धियां नष्ट भी हो सकती है अगर गलत प्रयोग किया, और सभी सिद्धियां पतंजलि ने भी लिखा है बाधा है साधना में, बंधन है वो भी। पर हमारी जो सिद्धियां है वो थोड़ी सी अलौकिक सिद्धियां है, रूहानी सिद्धियां है, ऊपर से इसमें दिखावे का कुछ भी नहीं है, गुप्त सिद्धियां है, अदृश्य सिद्धियां है। जिसको तीसरा नेत्र हम दे देंगे उसको यहां कोई नेत्र आने वाला नहीं है, आप ही उसकी बुद्धि कुछ और सोचने लगी, समझ उसकी बदल जाएगी। कोई जिंदा है और हमने उसको ठीक कर दिया, ऐसा नहीं होने वाला। जैसे जीसस क्राइस्ट के पास कोई आता है अंधा व्यक्ति और जीसस उसको पूछता है क्या तुम्हारा मुझ में विश्वास है, वो कहता है हाँ प्रभु, यदि तुम्हारा मुझ में विश्वास है तो तुम्हें आंखें तुम्हें बिनाई मिलेगी, और वो ठीक हो जाता है, उसको देखने लगता है। एक व्यक्ति है 40 साल से पैरालाइज, लकवा लगा हुआ, जीसस क्राइस्ट आता है, कहता है अपने हाथ में अपने कपड़े लो और चलो, और वो चलने लगता है। ये सारी सिद्धियां चमत्कार, इनको चमत्कार कहा जाता है। परंतु वास्तविक चमत्कारी आत्माएं कौन है? हम, क्योंकि हमारे इस तरह के चमत्कार नहीं है। बारिश नहीं हो रही है, हम कहें बारिश आ जाए तो बारिश आ जाए, रुक जाए तो रुक जाए, हम जा रहे हम आने के बाद आ जाना। ये संकल्पों के प्रयोग करना अलग चीज है, परंतु ये जो चीजें हैं, चमत्कार और दूसरों को प्रभावित करना और दिखाना, हील करना किसी को, ये सब माया है, सब माया है, इसमें जाना ही नहीं है। तो हमारी सिद्धियां कौन कौन सी? आठ बताई। सबसे पहला, फिर से रिवाइज करते हैं, जिनको पंख नहीं है उन्हें पंख देना है। उसके लिए हमारे पास इतनी शक्ति चाहिए कि हम किसी को पंख दे सके। हमारे पास, बाबा ने कहा, स्वयं उड़ने वाले और उड़ाने वाले, ये गीत अंदर बजता रहना चाहिए, तो ही हम दूसरों को पंख दे। खुद ही हम घायल है, खुद ही हम दुखी है, खुद ही अपने दुख दर्द में डूबे हुए, खुद ही अपना ही पुरुषार्थ ढंग से नहीं हो रहा है तो किसी और को क्या पुरुषार्थ कराएंगे। खुद ही देवी रो रही है और भक्त आरती कर रहे हैं, मां वो कहती है नहीं मैं नाराज हूं, बाजू वाला जो मंदिर है ना, जो उस देवी ने मुझे कुछ कह दिया इसलिए मैं उड़ा ऑफ। दुर्गा देवी नाराज है क्योंकि संतोषी मां उसको कुछ कुछ कहती है, संतुष्ट नहीं रहने देती। एक देवी दूसरी देवी से नाराज है, हनुमान जी रूठे हुए, गणेश जी ने कुछ कह दिया है। हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां थी, वो देने की भी शक्ति थी। ऐसे कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबरदीन जानकी माता, सारी सिद्धियां थी। गणेश के पास भी सिद्धि विनायक कहते हैं उसको, सिद्धि देता है, वो सिद्धि विनायक हम है, वो संकट मोचन हम है, वो प्रथमेश हम है, वो सारी सिद्धियां हमारे पास है। तो जो आत्मा के पास पंख नहीं उसको क्या कर देना है? पंख दे देना है। दूसरा, जिसके पास टांग नहीं है तो अभियान पर निकलना है। कौन कौन? लंगड़े हैं। किन किन का पुरुषार्थ लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है? ऐसे कौन है जो कभी अमृत वेला करते और कभी गायब, कभी तो बहुत ज्ञान की बातें करते और कभी परम मौन में चले जाते हैं? ज्ञान योग से आराम, थोड़ा सा आराम, रेस्ट तो ढूंढना है, और जैसे ही मिला उसको एक पैर चिपका देना ताकि वो पंगु लंगे थे गिरिम, पहाड़ पर दौड़ने लगे। तीसरा, आंख देनी है। आत्मा अंधी है, नहीं देख पा रही है। सत्य क्या, असत्य क्या, नित्य क्या, अनित्य क्या, सार क्या, असार क्या, सुखों में, सुख सुविधाओं में, वासनाओं में डूबी हुई है। उससे उसे साधना के पथ पर लाना है, तपस्वी बनाना है, योग बल उसमें भरना है, तपो बल भरना है। चौथा, भिखारी है, आध्यात्मिक दरिद्रता, स्पिरिचुअल पावर्टी से ग्रसित है, ज्ञान का कोई चिंतन ही नहीं है, ज्ञान मनन खत्म हो चुका है, अध्ययन खत्म हो चुका है, ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर है, बाबा ने रखा है, परंतु कटोरा खाली है, पता नहीं कहां चला गया, भाइयों ने ले लिया शायद सारा ज्ञान। चेक करते रहना ज्ञान कलश में ज्ञान है या नहीं है। अगली सिद्धि, जो दुख की शैया में है, सुख के गीत, जो चिंता की चिताओं में, इतनी चिंता, इतनी चिंता, हर बात की चिंता है, एक मिनट सो नहीं सकते, रात भर जागते रहते हैं, बेचैनी सी है, भय है, अज्ञात से भय, फोबियाज, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा हो जाए तो, भयभीत है आत्मा, दिल शिकस्त, जो दुखी उदास हो गए, निराश छा गया है जीवन में, कुंठा से भर गया है जीवन, होपलेसनेस, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। आज सुबह हम इधर थे अनादरा में, तो एक गाइड वो लोगों को समझा रहा था, ये ट्रू सनसेट पॉइंट है, इसको गणेश पॉइंट भी कहते हैं, इसको सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं, आप में से कोई दुखी है, इधर वो जगह है, ऐसे समझा रहा था वो उसको। यदि आप में से कोई दुखी होगा तो सामने जगह खाली है, गए तो सीधा स्टॉप फिनिश ऑफ, ऐसे बता रहा था वो। तो तिल शिकस्त है आत्माएं और लास्ट मर चुकी है आत्माएं। जैसे एक उदाहरण दिया है, एक व्यक्ति बारिश हो रही है तो किसी घर के किनारे रुक जाता है क्योंकि बारिश बाहर हो रही है, देखता है एक गुरु अपने शिष्यों को कुछ बातें बता रहा है, उसको लगता है पहले मैं क्यों सुनूं, मुझे क्या करना है, उनकी बातें, बारिश रुक जाएगी मैं चला जाऊंगा, पर वो गुरु ऐसी ऐसी बातें बता रहा है कि उसको आकर्षित हो जाता है। वो गुरु कहता है एक बार मैंने एक शेर को मार दिया, उसको लगता है अरे बाप रे। फिर दूसरी कहानी सुनाता है, एक बार ऐसा हुआ कि एकदम शेर का मेरा साथ सामना हो गया, शेर सामने से मैं आगे, और फिर वो शेर सामने आया, उसके शिष्य पूछ रहे आगे क्या हुआ, तब तक ये सोच रहा है मुझे क्या करना है, शेर हो या कोई हो, मुझे तो जाना है बारिश रुकते, पर वो सुनता है कान लगा कि आगे क्या हुआ, वो गुरु कहता है शेर सामने से मैं आगे, फिर और शेर सामने आया मैं और आगे आया, शिष्य पूछते और क्या हुआ, और क्या होना था, शेर मेरे ऊपर कूद गया और मुझे खा गया, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। वो बाहर वाला व्यक्ति कहता है अब मैं से नहीं रहा जाएगा, वो अंदर जाता है पूछता है अगर आपको खा गया तो आप अभी कौन हो, आप तो मर गए हो ना, वो कहता है ये मरा हुआ ही जीवन है, कौन कहता है मैं जिंदा हूं, घसीटते घसीटते जीवन चल रहा है, इसका कुछ आध्यात्मिक अर्थ है, वो कहता है मैं मरा हुआ ही हूं, तो संसार की आत्मा मरी हुई है, तो हमें क्या करना है, उन्हें संजीवनी बूटी देनी है, संजीवनी विद्या अर्थात वो सिद्धि है एक, तो ये 8 सिद्धियां, 5 स्वमान, 7 बातें जो बाबा ने हमारे लिए कही, और कितने प्रकार के गीत सुनाए, 9 प्रकार के गीत। तो दिल राम बाबा किसको देख रहे, दिलरुबा बच्चों को देखकर इतनी सारी बातें कह दी, इतनी गहरी गहरी बातें कह दी, और होमवर्क दिया तुम्हें क्या बनना है, सिद्धि स्वरूप, कैसे बनेंगे, विधि से। तो सारी सिद्धि स्वरूप बनने की विधि है अधिक से अधिक अशरीरीपन का अभ्यास, शक्तिशाली अमृत वेला, शक्तिशाली ज्ञान का चिंतन मनन अध्ययन, सेवा भी करो तो निष्काम भाव से सेवा कर दी और डिटैच, कोई लेना देना नहीं, अनासक्त भाव से, तो जब ऐसा सब होगा जीवन, तब अपने आप यहां सिद्धियां जमा होती जाएगी। और महत्वपूर्ण चीज, संसार में जो लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं, निरंतर साधना करनी होती, ऐसे नहीं 10 दिन साधना की ओर छोड़ के चले गए सिद्धियां नहीं मिलेगी, ये पुरुषार्थ 1 दिन का नहीं है, ये पुरुषार्थ 1 हफ्ते का नहीं है, 1 मास का नहीं है, 1 साल का नहीं है, निरंतर है, सतत अभ्यास से ही सिद्धियां प्राप्त होगी। तो सिद्धि स्वरूप बनना है, सिद्धि देने वाले, आवाज बुलंद होगी, बाबा ने कहा संसार में कौन सी, कि यही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय जहां पर सारी सिद्धियां सबको मिलेगी। तो ऐसा समय भी आएगा, ओ बाबा ये आपने ये कैसा जादू कर दिया, गीत सुना, हर एक के मुख से क्या निकलता है, बाबा तो बस मेरा है, ये गीत आज ब्राह्मणों का है, एक दिन आएगा विश्व का होगा, सबका होगा। ऐसे सिद्धि स्वरूप आत्माओं को हम बोलते जाओ, ऐसे स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, ऐसे सर्व संबंध एक बाप से जोड़ने वाली आत्माओं को, ऐसे चमत्कार दिखाने वाली चमत्कारी आत्माओं को, ऐसे पद्मापदम हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाली आत्माओं को, ऐसे दिलरुबा आत्माओं को, ऐसे खुशी से मेरा बाबा कहने वाली आत्माओं को, ऐसे अभ्यास करने वाली आत्माओं को, ऐसे उड़ने और उड़ाने वाली आत्माओं को, ऐसे सर्व संबंध एक बाप से जोड़ने वाली आत्माओं को, सब कुछ एक बाप के लिए है ऐसा समझने वाली आत्माओं को, ऐसे नयन ही इनको तीसरा नेत्र देने वाली आत्माओं को, ऐसे लंगड़ों को पैर, बिना पंख वालों को पंख, दिल शिखर दुखी चिंता की चिता वो सब वालों को नाचना कुछ सिखाने वाली आत्माओं को, भिखारी को धनवान सम्राट बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे वो हो गया दुख, वो सारा एक में आ गया, और ऐसे सिद्धि स्वरूप हो गया, ऐसे सिद्ध बाबा आत्माओं को, सिद्ध बाबा सिद्ध योगी सहज योगी आत्माओं को, ऐसे समय का इंतजार करने वाली नहीं, ऐसे ऐसे प्रत्यक्ष फल खाने वाली आत्माओं को, ऐसे भविष्य के दिलासे पर रहने वाली आत्माओं को नहीं, ऐसे सम्मान में स्थित रहने वाली आत्माओं को, ऐसे मस्तक सितारे भाग्य का सितारा जिनके मस्तक पर चमक रहा है ऐसी आत्माओं को, ऐसे ताज तख्त और तिलकधारी आत्माओं को, ऐसे विश्व के सामने एग्जाम्पल आत्माओं को, ऐसे महान आत्माओं को, तो ऐसी ढेर सारे सम्मान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। एक सूचना, मंगलवार दिनांक 26 को रात्रि क्लास में 24, 25, 26 तारीख की 3 दिन की मुरलियों पर आधारित खेल खेल में प्रश्न उत्तर होंगे, इसलिए सभी भाई बहने इन मुरलियों का अध्ययन करके आए। कौन सी तारीख को? 26 तारीख को 3 दिन का मुरली, 24 मतलब आज की जो मुरली, तो इस मुरली को वापस एक बार रिवाइज कर लेना, 24, 25, 26 ऑप्शन।